Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, Text Number 59. Kripaya, in pavitra shabdon ko mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, Yadahankaram ashritya nayotya iti manyase mityaisha vyavasayasti prakritistvam niyokshati yadahankaram ashritya nayotsya iti manyasi mityaisha vyavasayasti prakritistvam niyokshati yadahankaram ashritya nayotsya iti manyasi mityaisha vyavasayasti prakritistvam niyokshati yadahankaram ashritya nayotsya iti manyasi mityaisha vyavasayasti prakritistvam niyokshati yadahankaram ashritya nayotsya iti manyasi mityaisha vyavasayasti prakritistvam niyokshati. बहुत सुंदर शब्द हैं भगवान के, कृपया इन शब्दों का मतलब देखते हैं। भगवान कहते हैं यद, यद माना यदि, अहंकार यानी मिथ्या अहंकार की आश्रित्य शरण ग्रहण करोगे, न योत्स्य नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, और इति इस प्रकार मन्य से तुम सोचोगे तो मिथ्या ऐसा तुम ये सब झूठ है, ये सब झूठ है जो भी आप बोल रहे हो ना कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? व्यवसायस्ते संकल्प, ये तुम्हारा संकल्प खत्म हो जाएगा, झूठ है ये, आपका साथ नहीं देगा ये कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? आगे भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम नियोक्षते, जो प्रकृति है ना भौतिक प्रकृति, प्रकृति माना भौतिक प्रकृति, तो हम मतलब तुमको नियोक्षति मतलब लगा देगी। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार काम नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। इन आध्यात्मिक शब्दों को समझने के लिए कृपा की याचना करते हुए गुरु और गौरंग के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामहयं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवम्। कृष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पीतं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अष्टदशोध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 59। भगवान कहते हैं यदहंकारमाश्रित्य नयोज्य इति मन्यसि मिथ्यैष व्यवसायस्ति प्राकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। अब इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 56, 57, 58 ये जो तीन श्लोक में भगवान ने इतना अच्छे तरीके से बता दिया कि अगर आप मेरी चेतना में रहकर कार्य करोगे तो आप परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, यानी कि मेरी बात सुनो और जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे भगवान बोल रहे हैं या जैसे शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता बोल रही है और जैसे हमारे गुरु महाराज हमें एज इट इज समझा रहे, इस तरह से यदि आप कार्य करोगे तो भगवान ने क्या कहा, आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि फिर भगवान कृपा करेंगे ना। भगवान ने कहा मत प्रसादा तरिष्यसी, और जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरी कृपा से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अब यहाँ पर आगे हमें भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर आप मेरी चेतना में कार्य नहीं करोगे, पहले तो हो गया कि करोगे तो क्या तुमको परम सिद्धि प्राप्त होने वाली है। भगवान ने पहले भी बोला 56 में मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, आपको एकदम वह शाश्वत धाम प्राप्त हो जाएगा जो अव्यय है, जो सबसे हाईएस्ट टॉप जो सिद्धि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या करने से? मत चित्त। जब भगवान कहते हैं सारे कर्मों में यदि आप अपना चित्त मुझ में लगाओगे, मत चित्त तो चेतसा सर्व कर्माणी, सारे कार्य करते हुए यदि मई संन्यास मत परा तो फिर ये भक्ति योग हो गए। और अभी आगे भगवान हमें दो श्लोक में, श्लोक नंबर 59 एंड 60 में, ये दो में हमें ये बताएंगे कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो, कैसा नहीं करते हो, अपने चित्त को मुझ में लगाकर कार्य नहीं करते हो तो आप क्या करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे आज के श्लोक में भगवान ने कहा यद अहंकारम आश्रित्य, अगर मेरा आश्रय नहीं ग्रहण किया तो किसका आश्रय ग्रहण कर रहे हो, अहंकारम आश्रित्य, यानी कि मेरा हो, जब आप मेरा आश्रय ग्रहण करते हो तब तो आप दास हो, फिर तो आपका अहंकार है ही नहीं ना। दास का क्या अहंकार होता है, सिर्फ ये कि मैं दास हूँ, जैसा मेरे स्वामी बोलेंगे वैसा करना। लेकिन जब हम इस दास भाव से हटकर स्वामी भाव में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा करूंगा, तो ये अहंकार का आश्रय ग्रहण करना होता है। तो भगवान उसके विषय में बोलते हैं यद अहंकार आश्रित, यदि तुम अहंकार का आश्रय ले लोगे न योत्स्य इति मन्यसे, न योत्स्य इति मन्यसे यानी कि मैं ऐसा, आप ऐसा बोलोगे कि मैं नहीं कर, नहीं युद्ध नहीं करूंगा, मन्य से मतलब मैं ऐसा सोचूंगा, तुम ऐसे सोचोगे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, अहंकार आश्रय हो गया ना कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, न योत्स्य इति मन्य से, और तुम सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आगे भगवान कहते हैं कि क्या होगा, मिथ्येष व्यवसायस्ते, क्योंकि ये तुम्हारा जो व्यवसाय है ये इसका मतलब है जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, वो मिथ्या हो जाएगा, टिकेगा नहीं ज्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि प्रकृति संयोक्षते, जो प्रकृति है वो तुमको जबरदस्ती वो कार्य कराएगी। अभी तुम बोलोगे युद्ध नहीं करूंगा, बाद में जैसे कोई तुम्हें उत्तेजित करेगा तो तुम क्षत्रिय के समान कार्य करना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हारे क्षत्रिय है स्वभाव है, तो जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा वैसा तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कार्य नहीं करोगे और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो तुमको मारते जाओगे, फिर तुम मतलब कोई दूसरा अपने स्वभाव के बदली में कोई दूसरा धर्म इख्तियार तो कर लोगे लेकिन उसको भी सही तरह से निभा नहीं जाओगे, निभा नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव प्रकृति स्वामीयोक्षते, तुम्हारी जो प्रकृति है तुम्हें अपने स्वभाव के द्वारा युद्ध करने में या प्रकृति अपने स्वभाव के द्वारा कार्य करने में प्रवृत्त करवाएगी जबरदस्ती। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय स्वभाव से क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, उसका जो स्वभाव था वो क्षत्रिय जैसा था, अतएव उसका स्वभाव विक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। स्वभाव उसको क्या प्रेरित करता था कि उसको युद्ध करना है, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था, फिर भी वो डर रहा था अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने से कि अपने गुरु पिता माता तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी बनेगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था। सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक है ना वो ये है कि हम अपने आप को कर्मों का स्वामी जानते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को, तो भगवान श्री कृष्ण ने 2.47 में इतना अच्छा बताया है और ये इतना अच्छा लगता है श्लोक, इतना प्यारा है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। बस तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा कर्तव्य है अपने स्वभाव के अनुसार, जो तुम जिस भी वर्ण में हो उसके अनुसार तुम्हें कार्य करना है, लेकिन उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रखनी है। तुम ना तो कभी अपने को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति रहो। कार्य करना पड़ेगा तो अपने स्वभाव के अनुसार जो तुम्हारा धर्म बनता है उसके अनुसार कार्य करो। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे अगर आप कार्य नहीं करते हो तो क्या करते हो, वो अपने आप को अपने कर्मों का स्वामी मानता है। क्योंकि कार्य क्यों कर रहे हैं कि मेरी मर्जी है तो मैं कार्य करूं, नहीं नहीं मर्जी नहीं है, आपका धर्म है, जो आप कार्य कर रहे हो वो आपका कर्तव्य है, मर्जी नहीं चलती, कर्तव्य में आपको कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे और अच्छे फलों का निर्देशन करता है, यानी कि वो स्वामी मान रहा है ना कि मैं अगर ये करूंगा तो उसका अच्छा फल नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो सोच रहा है अच्छा फल नहीं हो सकता है, इसका मतलब है वो अपने आप को स्वामी मानता है। भगवान को तो बीच से निकाल दिया ना कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, बाकी जो फल है वो भगवान की मर्जी है, अच्छा हो या बुरा हो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसका फल अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है वो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, तो ये नहीं सोचता है ना। तो ये इसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हूँ। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। साक्षात कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं और भगवान ने पहले ही बोल दिया अर्जुन को, आपको युद्ध करना है। अब भगवान ने तो अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया, बता दिया, अर्जुन को पता चल गया। फिर भगवान कहते हैं युद्ध करो, तो अर्जुन क्या बोल रहा है, त्याग और संन्यास के बारे में बता दो कि शायद ना भगवान ऐसे बोल दे कि युद्ध नहीं करना। हालांकि भगवान ने एक बार बोल दिया कि आपको युद्ध करना है, यहाँ इसी बात को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वह बोल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और वह युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। बद्ध जीव जो इस प्रकृति में आकर बद्ध हो जाता है, जिसको भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है, तो वो भूल जाता है कृष्ण को, कृष्ण के आदेश को। और सबसे बड़ी गलती वही होती है, क्योंकि जब हम भगवान के आदेश, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बोल दिया कि अथ चेत्त्वम अहंकारान न शोषयति विनक्षति, जिस समय तुमने मेरे निर्देशन का पालन नहीं किया उसी समय तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो ये बद्ध जीव का सर्वनाश केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो भगवान के आदेशों अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। और भगवान साक्षात स्वयं आदेश देते हैं कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता हमारी लाइफ गाइड है, वो हमें बताती है कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, जैसा कि भगवान बता रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यही बद्ध जीव की विस्मृति है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना होगा। यदि अपने जीवन को सफल करना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाए, कृष्ण भावनामृत में प्रवेश हो जाए, कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करें। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकता है, क्योंकि भाग्य जो है वो भगवान के हाथ में है। भगवान आपके कर्म को नहीं, आपके कर्म के अंदर जो निष्ठा है ना उसको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया श्लोक नंबर 48 में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निर्विवावृता। देखो कुंती पुत्र अर्जुन, प्रत्येक उद्योग हर कार्य में किसी न किसी दोष का आवृत्त होता है, कोई ना कोई दोष होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी हुई होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष पूर्वक क्यों न हो कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी कि भगवान कर्मों के अंदर दोष को नहीं देख रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं कि उस कर्म करते हुए आप कितना भगवान का आश्रय ले रहे हो, भगवान को कितना सरेंडर किए हुए हो, भगवान के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है। यदि वो एकदम परफेक्ट है, आपकी निष्ठा एकदम परफेक्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.27 में भगवान ने कह दिया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि धरासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्त्वमदर्पणं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित कर दो। ये सोचकर करो कि मैं केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, भगवान बताते हैं 28 में, शुभा शुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि। इस प्रकार करने से, किस प्रकार, अपने समस्त कर्मों को भगवान के संरक्षण में करने से या भगवान के चित्त भगवान को चित्त में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करने से क्या होगा, भगवान कहते हैं शुभा शुभ फल ही रहे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओ। जो भगवान के पास जाने का एक ही तरीका है कि अपने समस्त कर्मों को करते रहें और भगवान का आश्रय लेकर भगवान को अर्पित करके यदि हम कार्य करते हैं तो फिर उन कार्यों का अच्छा और बुरा परिणाम नहीं होता है, बस वो तो शुद्ध सात्विक कर्म होते हैं। अच्छा और बुरा परिणाम तो भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 17 और 18 में भी शुरू में बता दिया कि वही कार्य जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में होंगे उसी के परिणाम निकलते हैं। शुद्ध सत्वगुण में कोई कार्य किया हुआ होता है वो तो भगवान की खुशी के लिए किया होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है सिवाय इसके कि वो भगवान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर के निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु महाराज के आदेशों की वह कभी भी उपेक्षा ना करें, यानी कि हमने जो भी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, क्योंकि गुरु और कृष्ण का आदेश डिफरेंस नहीं होता है, तो उसी आदेश को हमें फॉलो करते हुए अपना कार्य करना है और उस आदेश की उपेक्षा कभी नहीं करनी है। यदि हम सर्वनाश से बचना चाहते हैं, यदि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में बसने से बचना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हम भगवान के आदेश अनुसार कार्य करें। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बस कोई हेजिटेशन नहीं, जैसा मेरे कृष्ण ने कहा है वही मुझे कार्य करना है। और कृष्ण ने क्या कहा है, 57 में ऑर्डर दिया भगवान ने, कहा चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम् भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। बस आप कंटिन्यूअस मेरा मेरी चेतना में कार्य करो, अपना कार्य चेंज मत करो। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं जो कर रहा हूँ केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान के आदेशों को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आप एकदम सुरक्षा चक्र के अंदर हो। कैसे, भगवान ने बताया ना श्लोक नंबर 58 में, अगर तुम मेरी भावना में रहकर कार्य करोगे, कृष्ण भावनामृत में यानी हृदय के अंदर कृष्ण को बिठा के कार्य करोगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तो क्या होगा, सर्व दुर्गाणी जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो भी कठिनाइयां आने वाली हैं, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन सबसे सुरक्षित हो जाओगे। कैसे, मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, क्योंकि कृपा करेंगे ना जब भगवान को सेंटर में रखेंगे। और इसी चीज को आगे भगवान श्री कृष्ण सुंदर शब्दों में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वभाव जीन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, स्वभावजेन कान्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्। स्वभावजेन कान्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्। स्वभावजेन कान्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपियात् स्वभावजेन कांतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपियात्। शब्दों का अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं स्वभावजेन कौनते, स्वभावजेन यानी अपने स्वभाव से उत्पन्न कौनते, हे कुंती पुत्र निबद्ध बद्ध हो स्वेन तुम अपने कर्माओं यानी कार्यकलापों से, क्योंकि आपका जो स्वभाव के अनुसार जो कार्य है उससे आप बंधे हुए हो। और आगे भगवान कहते हैं कर्तुम नेच्छसी, कर्तुम मतलब करने के लिए, नेच्छसी नहीं इच्छसी, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं भी होगी ना तो भी आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बद्ध हो। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के अंदर जकड़े हुए हैं, तो प्रकृति हमसे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करवाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी आपको करना पड़ेगा। और आगे भगवान कहते हैं यन्मोहात् करिष्यसि, जो यन मन जो मोहात् मतलब मोह से करिष्यसि, आप करोगी अपना प्रकृति के अनुसार आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो भी अपना कार्य करोगे करिष्यसि। और आगे भगवान कहते हैं कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपियत् अवश्य, अवश्य मतलब जरूरी करोगे आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ना चाहो और ना करो, आपको करना ही पड़ता है अपने प्रकृति के अनुसार जो कार्य है उसको आप त्याग नहीं सकते हो, बल्कि आपका दिल भी नहीं करेगा ना तो भी आप नहीं कर सकते, यानी स्वभाव से जो कर्म है उसको त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति, वो तो लाजमी करना पड़ेगा, इसीलिए उसको छोड़ देंगे तो बाद में वैसे ही कार्य में लग जाएंगे। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है जिनमें वह स्थित रहता है। अब भगवान ने बोल दिया वो कार्य करना चाहिए या बाध्य होकर कार्य करना चाहिए, डिसीजन हमारे ऊपर है, लेकिन यदि भगवान जो बोल रहे हैं वो भी हम वही बोल रहे ना कि आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो और मन मुझ में लगाओ, सिर्फ मेरी चेतना में रहो, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी कार्य तो करना पड़ेगा, और वो किस लिए करेंगे फिर, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म बांध के गुणों के अनुसार बद्ध होकर करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा। एक गुरु की दक्षता क्या होती है कि वो अपने शिष्य को स्वभाव के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी, जब उनकी दक्षता क्या थी, जब वो पाश्चात्य देश में गए, जब उन्होंने इस्कॉन की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना की, तो सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने का मौका दिया। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे उनको, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो एडवेंचर्स कार्य करना चाहते थे, उनमें बहुत रुचि थी कुछ नया करने के लिए, तो श्री प्रभुपाद ने उनको प्रचार किया कि हाँ ठीक है आप अपना जप करो, चार नियम का पालन करो, फिर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य, ऐसा नहीं बोला उनको कि आप 64 माला करो खाली आप ना सब कुछ छोड़ के, नहीं आप कार्य करो, प्रचार कार्य में अलग अलग जगहों पे जाओ अपने हिसाब से, जैसे आपको बनाना है सेटिंग बनाओ और करना भगवान के लिए कार्य है, लेकिन जैसा तुम्हारा स्वभाव है, किसी को जैसे अब कैसे है, जैसे यदुरानी देवीदासी को बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना है, आदित्य श्री प्रभुपाद ने उनको उसमें लगा दिया कि भाई ठीक है हाँ आप पे ना ये पेंटिंग बनाओ, और अगर किसी को मैनेजमेंट का काम आता था तो श्री प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप ये वाला करो, अगर किसी को एडिटिंग करना आता था बुक्स रीडिंग राइटिंग करना आता था वो कार्य करो, किसी को कंप्यूटर का काम आता था तो वो करो, यानी कि अपने स्वभाव के अनुसार जो भी आपका स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करो, कार्य किसके लिए करो, भगवान के लिए, लेकिन करना के क्या है, वही जो आपका स्वभाव है तो उसमें क्या है रुचि है मनुष्य की, वो खुद ही वो कार्य करता रहेगा क्योंकि वो उसी प्रकृति का है। देखो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अनुसार संयोग के वशीभूत होकर और तदनुसार कर्म करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रकृति के गुण जो हैं वो उसे विवश कर देते हैं, वशीभूत कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, कर तुम नेच्छसि, तुम्हारी इच्छा नहीं है, यन मोहात, अगर मोह के अनुसार तुम बोलते हो कि मेरी इच्छा नहीं है तो भी करिष्यस्य वशोपि, आप बहुत ज्यादा आपको वश ऐसे विवश हो जाओगे अंदर से करने के लिए, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। इसीलिए देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत होकर तद अनुसार कार्य करता। अब जीव के बारे में अगर देखा जाए तो जीव जो है जिस प्रकृति के अंदर होगा वैसा कार्य करेगा। जैसे परिंदे का स्वभाव क्या है? उड़ना। वो उड़ेगा, उसको आप चाहे कितना भी कैद करोगे वो अपने स्वभाव के अनुसार उड़ने के लिए चेष्टा करेगा। उसी तरह है ना, जो भी जिसको जो भी मनुष्य नहीं उड़ सकता, मछली का स्वभाव है तैरना, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आप नहीं तैरो, आप रुक जाओ, उसका स्वभाव उसको। अब ये तो समझ में आता है ना कि जिस आप जिस प्रकृति के अंदर हो, बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ता, है ना, उसके अपने जो स्वभाव के अनुसार है उसको कार्य विवश होकर प्रकृति उसको करवाती है तो उसको करने पड़ते, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक ही मनुष्य होता है, मनुष्य पे अगर आए तो मनुष्य के अंदर भी अलग अलग प्रकृति होती है। किसी को किसी का स्वर इतना अच्छा होता है, उसको संगीत गाने में अच्छा लगता है, किसी का ना दूसरा जैसे कार्य लिखने का और ये इसको अच्छा लगता है, बोलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, किसी का है ना म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, किसी मतलब स्वभाव के अनुसार अपना अपना अलग एक कार्य होता है उसका। तो इसको कैसे अब यहाँ पर अगर इसके अनुसार हम पढ़ते हैं, स्वभाव जैन कौन थे निबद्ध स्वेन कर्मणा, कि आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए निबद्ध हो। निबद्ध हो मतलब बंधे हुए हो, आपको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो रेज होता है ना कि हमें तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है। यदि हम प्रकृति के गुणों में रहकर कार्य करेंगे, गुणों के अनुसार, अगर आप प्रकृति के गुणों को लांघते नहीं हो, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करना है, तो फिर तो आप प्रकृति के गुलाम बन जाओगे, ऐसा होगा ना। तो फिर इससे कैसे बचना है वो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 61 में बताएंगे। तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।